पेज 208, 208, द डिसेंट इनटू नाइट। श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं कि अंधकार का राज्य कैसा होता है। हम लोग कहेंगे ये हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंधकार के राज्य में मनुष्य जीता है, किंतु उसके मूल में क्या होता है, अंधकार का राज कैसे अपना विस्तार बढ़ाता है, कहाँ कहाँ पर फैलता है। तो पहली चीज जो अंधकार के राज्य में अचित, अज्ञान, मिथ्यात्व, ऑल हु वेर देयर लिव्ड फॉर देमसेल्व्स अलोन, ये उसकी स्टैम्प, ट्रेडमार्क है। वहाँ जो भी लोग रहते हैं वे केवल मात्र अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, समूह का जीवन, समष्टि, भगवान, सारा विश्व, ये सब उनके सोच से बहुत, परिधि से बहुत दूर की बात है। वो केवल अपने लिए जीते हैं। अराजकता का यह प्रारंभिक चिन्ह होता है। ऑल वार्ड अगेंस्ट ऑल बट विद ए कॉमन हेट, ये इसका टिपिकल एग्जाम्पल। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, देखने में लगता है कि यूनाइटेड हैं, लेकिन नहीं, वो आपस में बहुत झगड़ते हैं अपने सुप्रीमेसी के लिए, इसीलिए उनके इतने खंड बनते जाते हैं और हर एक खंड का एक नाम होता जाता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो है नफ़रत। उनको ये पता है कि घृणा किससे करना है, घृणा किससे करना है, जो भी प्रकाश, सत्य, प्रेम, बंधुत्व उसको लाता है उससे घृणा करना है, कॉमन हेट। लेकिन हेटरेट का तरीका क्या होगा, उसमें वे लोग डिफर करते हैं। टर्नड ऑन द माइंड दैट सॉट सम हायर गुड, ट्रूथ वॉज एग्जाइल्ड लेस्ट शी शुड डेयर टू स्पीक। तीसरी पहचान होती कि वहाँ सत्य को प्रवेश करने की मनाही होती है। गेट पर लिखा होता है ट्रूथ आने से उसके गेट पास मांगा जाता है, और फॉल्सहुड इज अलाउड बट ट्रूथ नहीं, बिकॉज डेंजरस है, ट्रूथ आएगा तो सब उलट पुलट कर देगा। कंस का राज्य है, सब अलाउड है लेकिन कृष्ण अलाउड नहीं है, और जब वो आते हैं तो सब चेंज कर देते हैं। सेम विद रावण का राज्य, ये सिम्बॉलिक स्टोरीज हैं। ट्रूथ वॉज एग्जाइल्ड लेस्ट शी शुड डेयर टू स्पीक एंड हर्ट द हार्ट ऑफ डार्कनेस विद हर लाइट। सत्य से वे केवल डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उससे उनके हृदय को चोट पहुंचती थी। लुक एट दिस, हर्ट द हार्ट ऑफ डार्कनेस विद हर लाइट, प्रकाश से वो घबराते थे। और ब्रिंग हर प्राइड ऑफ नॉलेज टू ब्लैस्फेम द सेटल्ड एनार्की ऑफ एस्टैब्लिश्ड थिंग्स। वो एक ऐसा राज्य था जहां डिसऑर्डर, अराजकता क्रिस्टलाइज हो गई थी। उसमें लोग पैदा होते थे, जीते थे, श्वास लेते थे, और उनको उसकी आदत पड़ गई थी, सेटल्ड एनार्की। कुछ समय पूर्व भारतवर्ष में अगर हम देखें, अभी भी अब कम हो रहा है, लेकिन कुछ समय पूर्व ये माना ही जाता था कि अगर आप कुछ काम कराने गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो तो आपको साथ में कुछ पैसे रख करके देने हैं। इट वॉज़ ए वे ऑफ लाइफ। ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं, आपको पैसे रख के देने हैं। और लोग सोचते भी नहीं थे कि ये गलत है। इसको कहते हैं शेरविंद सेटल्ड एनार्की। व्यक्ति उसमें खुश है, रोड टूट रही हैं, बन रही हैं, फिर तोड़ी जा रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली कोई पैसे खा रहा है, लेकिन कोई लेना देना नहीं। रोज हमारा साइकिल, हमारा स्कूटर, हमारी कार जब तक जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं ऑल लिव्ड फॉर देमसेल्व्स। लेकिन जिस दिन हमारी कार को ऑब्स्टिकल होगा, उस दिन हंगामा होगा कि ये रोड क्यों टूटी है, क्या ये अवस्था या अव्यवस्था। और उस अव्यवस्था के प्रति जब व्यक्ति तमस में आकर के स्वीकार कर लेता है, घोर तामसिकता का लक्षण होता है कि वो अव्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। दुर्योधन के राज्य में कोई नहीं उठा रहा था कि ये गलत कर रहे हो तुम, उस कुव्यवस्था को स्वीकार किया हुआ, सेटल्ड एनार्की ऑफ एस्टैब्लिश्ड थिंग्स। तो उस एनार्की में अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता था तो उसको कहा जाता था योर नॉलेज इज ब्रिंगिंग टू ब्लैस्फेमी, तुम मेरे विरुद्ध कह रहे हो। ब्लैस्फेमी वर्ड यूज किया जाता है टुवर्ड द डिवाइन, लेकिन यहां पर उल्टा था। राजा के विरोध में कोई कुछ कहता था तो कहा जाता था राजा तो भगवान है। कुछ समय पूर्व भारतवर्ष में यह अवस्था थी, राजा तो भगवान है, ब्राह्मण तो भगवान का बनाया हुआ विशेष वो है, उसके विरुद्ध कुछ कहना, अरे तो महापाप है, ब्लास्फेमी, उसको पाप माना जाता था। देन द सीन चेंज्ड बट केप्ट इट्स ड्रेडफुल कोर। दृश्य बदल गया लेकिन उसके भीतर वही भयानक चीजें छिपी थी। ऑल्टरिंग इट्स फॉर्म द लाइफ रिमेन्ड द सेम। ए कैपिटल वॉज देयर विदाउट ए स्टेट। अद्भुत लाइन है। आज के आधुनिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में देखें तो सोमालिया, कुछ समय पूर्व अभी भी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या था, कहते थे हम लोग अफगानिस्तान कंट्री है, पर अफगानिस्तान में क्या था, ट्राइब्स थे जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। पाकिस्तान में आधुनिक अवस्था, आधुनिक व्यवस्था क्या है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कैपिटल विदाउट ए स्टेट। कैपिटल क्या होता है, केंद्र होता है किसी सामूहिक जीवन का, केंद्र है, पर आप पूछें कि आपका इन्फ्लुएंस कहां तक है, बस हमारी चार दीवारी के अंदर। सो कैपिटल वॉज देयर विदाउट ए स्टेट। नाम के लिए प्रधानमंत्री है लेकिन उस प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट का अपनी चार दीवारी के बाहर इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ समय पूर्व अभी भी कहते हैं पाकिस्तान का यही हाल है कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड नहीं करती है, मिलिट्री और टेररिस्ट ग्रुप डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, गवर्नमेंट चुपचाप केवल सिग्नेचर करती है। तो श्री अरविंद कहते हैं ये अवस्था क्या है, ए कैपिटल वॉज देयर, घोर अंधकार की अवस्था है। इट हैड नो रूलर, ओनली ग्रुप्स दैट स्ट्रोव। कई सारे ग्रुप थे और वे आपस में लड़ रहे थे। ही saw a सिटी ऑफ ancient इग्नोरेंस founded अपॉन ए soil दैट न्यू नॉट लाइट। एक ऐसी भूमि जिसने प्रकाश देखा नहीं था। ये इस मामले में पाकिस्तान भिन्न है। पाकिस्तान और भारत का एक ही इतिहास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने भी वैदिक प्रकाश को देखा है जिस प्रकाश को भारत ने देखा है, परंतु that knew not light, there each in his own darkness walked alone, only they agreed to differ in evil's paths। कैसे संसार में पाप, अराजकता, अधर्म को फैलाएं, उसके बारे में मतभेद थे, नहीं ऐसे करने से पाप फैलेगा, नहीं वैसे करने से आतंक फैलेगा, इस आतंक को कैसे फैलाएं उसके बारे में वे डिफर करते थे, परंतु बाकी सब में अलग। टू लिव इन देयर ओन वे फॉर देयर ओन सेल्व, केवल अपने लिए, अपने से परे कोई संसार है, कोई समाज है, कोई सामूहिक जीवन है, देश है, मनुष्यता है, इसके बारे में एक विचार भी नहीं आता था। और टू एनफोर्स ए कॉमन लाई एंड रॉन्ग प्रोपोगंडा के द्वारा। श्री अरविंद कहते हैं असुर की दो प्रमुख हथियार होते हैं, इनफैक्ट तीन हथियार होते हैं, पर उसमें दो वो मेन बताते हैं, प्रोपेगेंडा और रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन के द्वारा हर चीज इस तरह से होगी तो वो रेजिमेंट कर देता है, तो मनुष्य सोचना बंद कर देते हैं। जब रेजिमेंटेशन हो जाता है जीवन का तो व्यक्ति सोच नहीं पाता है, वो बस जैसे चीजें चल रही हैं उसमें मशीन की तरह घुसता है निकलता है, मशीन की तरह घुसता है निकलता है, अविवेकी हो जाता है। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं अगर भारतवर्ष को पुनः अपना गौरव प्राप्त करना है तो उसको ओरिजिनल थिंकिंग लानी है। ओरिजिनल थिंकिंग कैसे लानी है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करना है, अपने स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन करना है, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर ओरिजिनल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। रेजिमेंटेशन, दूसरा प्रोपेगेंडा, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि व्यक्ति उसको स्वीकार, हाँ यही सच होगा, क्यों हजार बार उसको रिपीट कर दिया गया। तो कॉमन लाई एंड रॉन्ग, ये फोर्स किया जाता है लोगों को बाध्य। और कौन राज्य अभिषेक किसका होता था वहां, कौन राजा थ्रोन पर बैठता था, देयर ईगो वॉज लॉर्ड अपॉन हिज पीकॉक सीट। पीकॉक विक्ट्री का सूचक है, पर कौन वहां पर विक्ट्री, किसकी विक्ट्री, ईगो की विक्ट्री, अहंकार बैठा होता था। ये सारी जो हमारी कहानियां हैं रावण की, कंस की, वृहत अहंकार, राक्षसी अहंकार, आसुरी के अहंकार। आसुरी का अहंकार क्या कहता है, हम गलत नहीं हो सकते, मात्र हमारे, हम केंद्र हैं, हमारे चारों तरफ सबको घूमना है, जो हमें खुश करेंगे उनको मैं पदवी दूंगा, जो मुझे अपोज करेंगे उसको मैं नीचे गिराऊंगा। ये असुर का एक तरीका है, चाहे उसका अपना भाई क्यों ना हो, विभीषण को ही किक्ड आउट ऑफ हिज किंगडम। क्यों, क्योंकि विभीषण ने राम का नाम लिया और उसको सच सद्बुद्धि देने की चेष्टा की। एंड फॉल्सहुड सेट बाय हिम हिज मेट एंड क्वीन। रानी कौन था उस राजा का, मिथ्यात, उसका काम ये था राजा के कान भरना, और राजा का काम था उसके अनुसार कार्य करना. The world turned to them as heaven to truth and God. जैसे स्वर्ग सत्य की ओर मुड़ता है, नमन करता हुआ, सरेंडर करता हुआ. इस सिटी ऑफ एंशियंट इग्नोरेंस, अज्ञान, अचित अंधकार के जगत में लोग अहंकार के को पूजा करते थे. लोग सत्य की पूजा नहीं करते थे, वे अहंकार की पूजा करते थे. फ्लैटर करना, प्लीज करना, नीच के लाभ के लिए जीना, ये अहंकार की पूजा. अरे राजा आप तो बहुत अच्छे हो, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, आप भगवान हो. क्यों? क्योंकि मेरा उसमें लाभ है. तो ये अहंकार की पूजा. द वर्ल्ड टर्न टू देम एज हेवन टू ट्रूथ एंड गॉड. इनजस्टिस इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. भगवान को किसने देखा? आप तो हमारे लिए आप ही माई बाप हो. दिस हाउ इट यूज टू बी. पुराने समय में जमींदार कैसे ट्रीट करते थे, लोग जाते थे. इनजस्टिस जस्टिफाइड बाई फर्म डिक्रीज. खुलेआम वो इनजस्टिस करते थे, अन्याय. लेकिन कैसे जस्टिफाई करते थे? यही नियम है, यही कानून है, यही व्यवस्था है. फर्म डिक्रीज, आप उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हो. द सॉवरेन वेट्स ऑफ एरर्स लीगलाइज ट्रेड. मुझे तो बार बार ओल्ड टाइम लाइफ अभी भी ये सब है, पर गांव में ब्राह्मण के पांव छुने ही छुने हैं, और जो वो कह देगा वो सच है, आपको मानना ही मानना है. वो जहां जाएगा उसकी पूजा करनी ही करनी है. राजा जो न्याय करेगा, चाहे वो गलत हो सही हो, आपको बाध्य होकर मानना है. एरर्स लीगलाइज ट्रेड, उसी को आपने नियम बना दिया, कानून बना दिया, तो आप कोई उसके आगे क्या कर सकता है. दी सॉवरेन वेट्स ऑफ एरर लीगलाइज ट्रेड. अब देखिए यूमर, बट ऑल द वेट्स वेयर फॉल्स एंड नन द सेम. लेकिन सब वो जो मापदंड थे गलत थे, गलत थे. एक कहानी है छोटी सी कि एक आदमी ने कंप्लेन किया कि ये औरत मुझे गलत बेच रही है, सब कहती है 1 किलो लेकिन देती है उससे कम. तो इंक्वायरी हुई औरत के पास, लोग पूछा तुम इसको गलत क्यों देती हो? कहा मुझे पता नहीं, मुझे गलत क्या पता, मैं तो इससे एक बार लेने गई थी चीज़, 1 किलो चीज़, तो इसने मुझे दिया था पनीर, तो उसको उसके हिसाब से मैंने अपना पत्थर मापदंड कि अच्छा ये 1 किलो है, तब से मैं उसके पनीर के हिसाब से सब्जी तोल के देती हूँ, तो मुझे क्या पता कि उसने मुझे गलत तोल के दिया है. दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड, ऑल द वेट्स वेयर फॉल्स. देखिए 1 किलो तोल दिया लेकिन नीचे में मैग्नेट लगा है, वो किलो क्या है, पत्थर है. कुछ समय पूर्व यह होता था, इसको हाईएस्ट लेवल पर ये काम होता है. फॉर एवर शी वॉच्ड विद हर बैलेंस एंड ए सोर्ड लेस्ट एनी सेक्रिलीजियस वर्ड एक्सपोज दी सैंक्टिफाइड फॉर्मूलाज ऑफ हर ओल्ड मिसरूल. सैंक्टिफाइड फॉर्मूलाज, मिसरूल को आपने एक किताब में प्रिंट करके साइन कर दिया, ये रूल है. अब वो मिस रूल है, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो लीगलाइज हो गया. अब सोड के साथ वो जहां आपने उसके विरुद्ध कुछ बोला, सोड इज देयर टू थ्रो यू आउट, कट योर हेड. सो इट इज सो इंटरेस्टिंगली शेरविन बता रहे हैं इन हाई. अब ये कहां कहां पाया जाता था, ये लोग कहेंगे अच्छा ये अज्ञान अंधकार उन लोगों में पाया जाता होगा जो पढ़े लिखे नहीं होंगे. ठीक इसके विपरीत, इन हाई प्रोफेशंस रैप्ड सेल्फ विल वॉक्ड वाइड एंड लाइसेंस टॉक्ड प्रैटिंग ऑफ ऑर्डर एंड राइट. हाई प्रोफेशंस, वकील, डॉक्टर, पुलिस, ये हाई प्रोफेशंस में, एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पर ये अचित अंधकार अपना बोलबाला करके राज्य जमाए हुए था. स्टॉक्ड एंड लाइसेंस टॉक्ड प्रैटिंग ऑफ ऑर्डर एंड राइट. और सब लोग कहते थे व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, सही करना चाहिए, लेकिन कर क्या रहे थे? मनमानी, लाइसेंस टॉक्ड, स्पीकिंग ऑफ ऑर्डर एंड राइट. देयर वॉज नो ऑल्टर रेस टू लिबर्टी. कहा जाता था कि स्वतंत्र हैं सब लोग, लेकिन स्वतंत्रता के प्रति कोई अग्नि अर्पित नहीं की जाती थी. स्वतंत्रता एक दिव्य प्रिंसिपल है. फ्रीडम इज अ डिवाइन, इनफैक्ट वन ऑफ द हाइएस्ट डिवाइन ट्रूथ्स. लेकिन उस राज्य में स्वतंत्रता सबको दी गई थी जब तक आप सत्य और प्रकाश, इन दोनों को नहीं लाएं आप। अज्ञान, अंधकार, झूठ, तब तक स्वतंत्रता है। झूठ की स्वतंत्रता है, अज्ञान की स्वतंत्रता है, अंधकार की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रकाश और सत्य की स्वतंत्रता नहीं है। सो शेरविंद कहते हैं, देयर वॉज नो अल्टर रेस टू लिबर्टी, ट्रू फ्रीडम वॉज एबोर्ड एंड हंटेड डाउन। यदि कोई सच कहने का, बोलने का या लिखने का साहस करता तो इट वॉज हंटेड, उसको बंद कर दिया जाता। हारमोनी एंड टॉलरेंस नो वेयर कुड बी सीन। सामंजस्य, एक दूसरे को समझने का प्रयास। ईच ग्रुप प्रोक्लेम्ड इट्स डायर एंड नेकेड लॉ, ए फ्रेम ऑफ एथिक्स नॉब्ड विद स्क्रिप्चरल रूल्स। फ्रेम ऑफ एथिक्स, वहां एक नियम कानून बनाए गए थे, ब्लैक व्हाइट फ्रेम, ये ठीक है ये गलत है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, और फिर उस कानून को स्क्रिप्चरल रूल्स से नॉब कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया। जैसे कोई चीज़ फिक्स की जाती है तो कैसे फिक्स किया गया, ऐसा लिखा है सेक्रेट किताब में, इसलिए हमको उसके अनुसार चलना है। सती प्रथा इसलिए सही है क्योंकि हमारी पुस्तकों में लिखा है। ब्राह्मण को पूजा देना इसलिए सही है क्योंकि हमारी पुस्तकों में लिखा है। स्क्रिप्चरल रूल्स, कोई उनसे पूछता कहाँ लिखा है तो कोई कहने के लिए नहीं जानता था। स्क्रिप्चरल रूल्स, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। माता जी एक जगह कहती हैं अपने विषय में, यहाँ लोग कुछ नहीं समझते हैं और मेरा नाम लेके क्या क्या कहते रहते हैं, ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, और बाद में ये तो मूर्खता करते ही हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं कि वो कहते हैं जब मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर लाइक्स दिस, मदर डज नॉट लाइक दिस, उसके ऊपर बड़ी मूर्खता क्या करते हैं, माँ को ये पसंद नहीं है, माँ को ये पसंद है। व्हाट डू वी नो ऑफ द इन्फिनिटी, माँ को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है केवल माँ जानती हैं, नो ह्यूमन बींग कैन क्लेम टू ले होल्ड ऑन दैट। तो कहते हैं इस तरह से, और ए थ्योरी passionately believed and praised, a table seemed of high heaven secret code। स्वर्ग के विधान की जगह एक मनुष्य की एक थ्योरी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने से भगवान मिलते हैं, जो ऐसा नहीं कर रहा है ये व्यक्ति ये आउटकास्ट है, क्यों ये इस प्रकार से अपने हिसाब से चल रहा है। थ्योरी passionately believed, a formal practice mailed and iron shod gave to a rude and ruthless warrior kind, drawn from the savage bowels of the earth, a proud stern poise of harsh nobility, a civic posture rigid and formidable। Formal practice, रोज सुबह उठकर मान लीजिए नियम बना दिया जाए, रोज सुबह उठकर 7:30 बजे सब लोग मेडिटेशन के लिए आएंगे, और वहां पर एक आदमी खड़ा हो अटेंडेंस मार्क कर रहा हो, कौन मेडिटेशन के लिए आया, कौन 2 मिनट लेट आया, कौन नहीं आया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल प्रैक्टिस। ये अज्ञान, अंधकार, फॉल्सहुड के राज्य में होता है, भगवान के राज्य में नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे इस्लाम में कहा गया है 5 बार नमाज पढ़ना है, फॉर्मल प्रैक्टिस। अब जो नहीं पढ़ता है उसको माना जाता है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। फॉर्मल प्रैक्टिस ये अज्ञान अंधकार का प्रभाव है, और जो करता है वो सोचता है कि मैं बहुत राइटियस हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, रोज मैं नियम से जो नियम है उस समय जा करके मैं मेडिटेशन करता हूँ, हार्श पॉइज ऑफ नोबिलिटी कि आई एम समबडी ग्रेट। बट ऑल देयर प्राइवेट एक्ट्स बिलाइड द पोज, पावर एंड यूटिलिटी वेयर देयर ट्रूथ एंड राइट। नियम से 5 बार नमाज पढ़ते थे, नियम से ठीक टाइम पर जाते थे मेडिटेशन के लिए, लेकिन जो उनके प्राइवेट एक्ट्स थे वो ट्रूथ के ऊपर नहीं थे, वो केवल यूटिलिटी एंड पावर, जो करने से मुझे मेरा एम्बिशन सेटिस्फाइड होगा, मेरा लाभ होगा, वह कर्म करते थे। पावर एंड यूटिलिटी वेयर देयर ट्रूथ एंड राइट, केवल इस क्राइटेरिया पर वो कार्य करते थे। एन ईगल रेपेसिटी क्लॉड इट्स कोवेटेड गुड, beaks pegged and talons tore all weaker prey, in their sweet secrecy of pleasant sins nature they obeyed and not a moralist god। baki sabko moral sikhate the lekin wo khud swarth ke liye ji rahe the। Inconscient traders in bundles of contraries, they did what in others they would persecute. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये कि दूसरों को बता रहा था कि बेईमानी मत करो लेकिन खुद बेईमानी कर रहा है, दूसरों को कह रहा था सच बोलो लेकिन खुद झूठ बोल रहा है. दे डिड वॉट इन अदर्स दे वुड परसिक्यूट. अब यहाँ वो बाइबल की कहानी है और क्राइस्ट ने ये चीज़ बताई थी कि जब कोई उस औरत पे पत्थर मार रहा था जो वैश्या थी, क्राइस्ट कहते हैं कि ठीक है तुम मारना चाहते हो क्यों, अरे वो वैश्या है. अच्छा ऐसा है, पाप किया है उसने, हाँ बहुत पाप किया है. अच्छा ऐसा करो पहला पत्थर वो मारे जिसके अंदर बिल्कुल भी वैश्यावृत्ति की कोई टेंडेंसी ना हो. तो सब पत्थर हाथ में लेकर के नीचे गिर गए. जैसे ही क्राइस्ट ने कहा कि यू ठीक है यू स्टोन, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी पाप वृत्ति ना हो. तो श्री अरविंदु उस कथा का जिक्र करते हुए कहते हैं, व्हेन दे राइज लुक्ड अपॉन देयर फेलोज वाइस एन इंडिग्नेशन फ्लेम्ड ए राइटियस ए वर्चुअस रात. जैसे उन्होंने देखा ओ वो पाप कर रहा है, पापी, उफ कैसा आदमी है, देखो इतना पापी, घोर पापी, खुद नहीं जानता है कि ये करने से वो अंधकार के राज्य में चला गया है, घोर अंधकार के. वर्चुअस रात, मैं कितना पुण्य आत्मा हूं, मुझे अधिकार है उसको कहने का, करेक्ट करने का, वो पापी है. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, छोटी छोटी चीज में दूसरों को ठीक करना कि आपका कॉलर ये ठीक नहीं है, ये पीछे है, आपका सूलेस्ट. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग्स, कि केवल दूसरों की मिस्टेक्स पॉइंट करना. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. वर्चुअस रात, oblivious of their own deep hid offense, mob like they stoned a neighbor caught in sin, a pragmatist judge within past false decrees. इसको उन्होंने पाप करते पकड़ लिया. इस जगत में केवल एक ही चीज था, पाप करो पकड़े मत जाना, पकड़े गए तो आप कंडेम हो गए. छिप करके पाप करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले आम मत करो क्योंकि आपको पकड़ा जाएगा और आपको हैंग कर दिया जाएगा. सो मॉब लाइक दे स्टोन, मॉब लाइक क्राउड जमा हो जाती थी और पत्थर मारते थे उन पर. पोस्ट वर्स्ट इनइक्विटीज ऑन इक्विटीज बेस, पाप ठीक करने के नाम पर महापाप कर रहे थे ये लोग. रीजनड इल एक्शंस जस्ट सैंक्शन द स्केल ऑफ द मर्चेंट ईगोज इंटरेस्ट एंड डिजायर. दस वॉज ए बैलेंस केप्ट द वर्ल्ड कुड लिव. ए जीलट फर्वर पुश्ड देयर रुथलेस कल्ट्स. All faith not theirs bled scourged as heresy. अगर कोई भी उनका जो विश्वास था जिस भी रूप में भगवान के, अगर दूसरे को किसी और तरह से भगवान में विश्वास था तो उसको वो कहते थे ये भगवान में नहीं शैतान में विश्वास कर रहा है. अभी भी हम देखते हैं कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये टेंडेंसी है. इस्लाम में ये बहुत भयानक रूप से है, क्रिश्चियनिटी में ये उस बड़े सटल रूप में है. क्राइस्ट इज द ओनली वे. या इस्लाम कहता है काफिर है वो जो बंदा नहीं इस्लाम का, जो इसको मानता नहीं है वो तो अनबिलीवर है. यानी अगर आप ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि में अगर विश्वास करते हो या सच्चिदानंद में विश्वास करते हो तो आप भगवान के बंदे नहीं हो. आप केवल इस अल्लाह में मानोगे तब आप भगवान के रास्ते में हो, बाकी सब उससे दूर हैं. तो शेरविंद बताते हैं हाउ फॉल्सहुड कैन कम इन टू रिलीजन. दे क्वेश्चन्ड, कैप्टिव्ड, टॉर्चर्ड, बर्न्ड और स्मोट एंड फोर्स द सोल टू अबैंडन राइट और डाई. सोल का क्या राइट है? चुनाव करना. तो इस राइट को अबैंडन करो, जो हम कह रहे हैं उसको चुनो या फिर मरो. जोन ऑफ आर्क की स्टोरी है. जोन ऑफ आर्क को किसने, जोन ऑफ आर्क को क्राइस्ट के विजन्स होते थे. बड़ी विचित्र बात है, वो पूरी तरह जीसस क्राइस्ट में विश्वास करती थी. जीसस क्राइस्ट आके उसको विजन्स में बताते थे कई चीज़ें. किंतु जोन ऑफ आर्क को सूली पर किसने चढ़ाया, सूली पर उसको बर्न किसने किया? प्रीस्ट ने, क्रिश्चियनिटी के प्रीस्ट ने कहा नहीं तुमको कैसे विजन्स आ सकते हैं, ये अधिकार तो केवल पोप का है, ये अधिकार तो केवल उन लोगों का है जो सत्ता में हैं क्रिश्चियनिटी के. तुम एक साधारण गांव की लड़की, पढ़ी लिखी नहीं, तुमको क्राइस्ट आता है, ये कैसे हो सकता है कि 17 साल की बच्ची को क्राइस्ट के विजन हो रहे हों. और उसके जो विजन्स होते थे वो पोप की पॉलिसी के विरुद्ध होते थे. जो मूल उस समय जो राज्य था उसकी पॉलिसी के विरुद्ध होते थे। वो कहती थी नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए, सबको बराबर का बराबरी होनी चाहिए, पर वो चीज़ उनको स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने उसको ही जला दिया। क्या बोलकर, विजन्स आना ये डेविल का साइन है। अगर उसको विजन्स आ रहे हैं तो उसका मतलब उसको असुरी शक्तियों ने पजेस किया हुआ है, और उसको होस्टाइल फोर्स डिक्लेयर करके बर्न कर दिया। पर अब हम सब जानते हैं, बाद में उसको कैनोनाइज किया चर्च ने, उसको सेंट माना काफ़ी 100 वर्षों बाद, पर अब हम जानते हैं कि शी वॉज़ ए विभूति ऑफ द डिवाइन। सो यहाँ पर उस स्टोरी का वो है कि औरंगजेब के समय भी यही होता था, शरमत का गला काट दिया। गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे उनका भी, ही वॉज बिहेडेड, क्यों, तुम इस्लाम को मान लो। इनफैक्ट इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सारे हिंदू उनके पास गए, सिख धर्म जो निकला था हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, इट वॉज ए मार्शियल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, रक्षा करने के लिए निकला था। बहुत माइटी रिलीजन है, बहुत शेरविंद ने उसको बहुत ऊँचा माना है, और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक को अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ सेंट्स माना है। तो जब ये चल रहा था कि औरंगजेब का राज्य और सारे हिंदू की तुम या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ, तो गुरु तेग बहादुर ने ये कहा कि ठीक है, अगर मुझे तुम कन्वर्ट कर दोगे तो बाकी सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले उसने प्रयास किया कन्वर्ट करने का, ही कुड नॉट कन्वर्ट, प्रलोभन दिया कुड नॉट कन्वर्ट, भय दिखाया कुड नॉट कन्वर्ट, तो कहा मैं तुमको मार दूंगा अगर तुम कन्वर्ट नहीं होते हो, कहा कोई बात नहीं है। तो उस बड़ी सुंदर एक स्टोरी है कि गुरु को विजन होता है कि जिस अवस्था में भारत अभी है उस असहाय अवस्था से, मुगलों के राज्य से बाहर निकालने के लिए किसी एक महान पुरुष की सेक्रीफाइस चाहिए। तो वो, लेकिन कौन करेगा सेक्रीफाइस? तो ये विजन वो अपने शिष्यों को बताते हैं, कोई शिष्य कौन करेगा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस जिसे ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो उनका छोटा सा बालक गुरु गोविंद सिंह, उस समय गुरु नहीं थे, 9-10 साल का बालक, वो कंपोज करता है एक कपलेट, आई फॉरगेट दैट कपलेट, लेकिन उसका भाव यह है कि पिता आप तो स्वयं, आपसे बड़ा कौन है जो सेक्रीफाइस कर सकता है। सो वह अपने पिता को प्रेरणा देता है कि यू शुड सेक्रीफाइस, नोबडी एल्स कैन सेक्रीफाइस, तो ही एक्सेप्ट्स टू द सेक्रीफाइस। और कहा जाता है कि उनकी सेक्रीफाइस के कारण, उस एक मृत्यु के कारण सब पूरा पलटा, पलरा पलट गया और मुगल का राज्य समाप्त हो गया। सो उस राज्य की अव्यवस्था, amid her clashing creeds and warring sects, religion sat upon a blood-stained throne. A 100 tyrannies oppressed and slew and founded unity upon fraud and force. Religion sat upon a blood-stained throne. तो ये blood-stained throne, ये अगेन डायरेक्ट रेफरेंस वैसे इस्लाम को हम देखते हैं इसमें। जो भी लोग इस्लाम में जो भिन्न थे, जो विश्वास करते थे, नहीं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी ऐसे लोग आए जो भगवान को प्राप्त करते थे, तो उनका सेक्ट अलग कर दिया गया, शिया और सुन्नी, ये डिवीजन हुआ। अब उसमें ऐसे निकले जो उसके अभी आगे गए, कहते नहीं भगवान तो सर्वत्र है, हर चीज़ में मैनिफेस्ट होता है, तुम एक हो सकते हो, उनको और अलग कर दिया गया, तो वो सूफी हो गए। तो सूफीज़ को परसिक्यूट किया जाता था, जैसे क्रिश्चियनिटी में नॉस्टिक्स को परसिक्यूट किया जाता था। तो सूफीज लोग अपने सत्य को छिपाने के लिए दोहरी भाषा में लिखते थे, बाहर से देखने से लगता था कि साधारण जीवन की भाषा है, लेकिन अंदर में गहरा सत्य छिपा होता था। जैसे एक सूफी राइटिंग है जो परसिक्यूशन के समय, जब रिलीजन ब्लड स्टेन थ्रोन पर बैठा था और सारे सूफियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, तो एक सूफी सेंट लिखते हैं, अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा अरे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी है, कि मैंने थोड़ी सी तो शराब पी है, इस पर इतनी प्रॉब्लम क्या है आप सबको। लेकिन वो बाद में क्लियर करते हैं, मैं उस शराब की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको पी के व्यक्ति बेगाना हो जाता है, पर मैं उस शराब की बात कर रहा हूँ जिससे वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्राप्त करता है। बट जो उस समय के धार्मिक नेता थे वो सोचते अच्छा ये तो शराबी है, शराब की बात कर रहा है, पर थ्रू दैट देवर कन्वेइंग डीप मैसेजेस, क्योंकि उस समय धर्म परसिक्यूट करता था, क्रिश्चियनिटी में भी इंक्विजिशन था। सो इस तरह की चीज़ें फॉर्चुनेटली भारतवर्ष में, भारतवर्ष की परंपरा में नहीं हुई है, वारिंग सेक्ट्स हुई है लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ा है. ओनली वॉट सीम्ड वॉज प्राइज्ड एज रियल देयर, दिखावे को ही सच माना जाता था, आंतरिक सच्चाई को देखने वाला कोई नहीं था. द आइडियल वॉज ए सीनिक रिडिक्यूल्स बट हुटेड बाई द क्राउड, मॉक्ड बाई एनलाइटेंड विट्स. ये सब श्री अरविंद के आयरोनिक कमेंट्स हैं. एनलाइटेंड विट्स, एनलाइटेंड मतलब जो, अरे उस राज्य में कोई अगर कहता साधना की बात, ज्ञान की बात, अरे पागल है, कहां से पता नहीं आ गया, साधना करने आया है, पागल है, मूर्ख है. आइडियल वॉज ए सीनिक्स रिडिक्यूल. स्पिरिचुअल सीकिंग वांडर्ड आउटकास्टेड. कोई अगर सचमुच बात करता भगवान की, साधना की, तो उसको आउटकास्ट कर दिया जाता था. ए ड्रीमर्स सेल्फ डिसीविंग वेब ऑफ थॉट. ये तो केवल इंटेलेक्चुअल है और कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये केवल भगवान की, साधना की, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है. और मैड शिमरा डीम्ड, और हिपोक्रिट्स फेक, उसको लोग हिपोक्रिट कहने लगते थे. मैड शिमरा कि ये तो दुस्वप्न देख रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं. इट्स पैशनेट इंस्टिंक्ट ट्रेल्ड थ्रू माइंड्स ऑब्स्क्योर, लॉस्ट इन द सर्किट्स ऑफ द इग्नोरेंस. ए लाई वॉज देयर द ट्रूथ एंड ट्रूथ ए लाई. सब वैल्यूज उल्टे हो गए थे उस जगत में. सच को लोग झूठ समझते थे और झूठ को लोग सच समझते थे. इतना भयानक प्रभाव था ज्ञान का, अंधकार का, कि वहां पर अगर कोई कहता राम भगवान है, राम भगवान, अरे वो तो अपने लिए बेचारे एक हवाई जहाज, क्या एक बैलगाड़ी भी नहीं जुटा सकते हैं, दो चार बंदरों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं. भगवान, भगवान तो रावण होता है, पुष्पक विमान पर जाता है, देवता उसके दास हैं, इसको पावर कहते हैं, भगवान कहते हैं. वो ग्वाला दूध दुहने वाला, उसको भगवान बोलते हैं कोई? ट्रूथ वॉज देयर ए लाई. यही तो दुर्योधन ने बोला था ना, छलावा दूध दुहने वाला ग्वाला जो सबको भ्रमित करता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? ये ए ट्रूथ वॉज देयर ए लाई एंड लाई ए ट्रूथ, वहां झूठ का बोलबाला था. हियर मस्ट द ट्रैवलर ऑफ द अपवर्ड वे. जब इस भूमि पर व्यक्ति आता है, ये भूमि सबके योग यात्रा में आएगी कभी ना कभी, अंदर बाहर. तब क्या करना चाहिए? जैसे ही इस भूमि के सामने कन्फ्रंट करो, हियर मस्ट द ट्रैवलर ऑफ द अपवर्ड वे फॉर डेयरिंग हेल्स किंगडम्स वाइंड्स द हेवनली रूट. Pause और pass slowly through that perilous space. हर किसी के जीवन में आएगी. बिना नरक से पास हुए स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती. ये गेट पास, आपको गेट पास पाने के लिए पहले वहां जाना है जहां जाने से आपको भयभीत होगा, पता नहीं कि मुझे मिलेगा कि नहीं. सो दैट इज हाउ यू हैव टू पास थ्रू दैट डोर ऑफ हेल. जो नरक से नहीं गुजरा वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता. तो यहां पर शेरविंद कहते हैं, जब इस भूमि पर आओ तो धीरे धीरे बहुत संभल कर चलो. क्यों, कैसे चलो? ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स एंड द ग्रेट नेम. केवल भगवान का नाम उस भूमि पर बचा सकता है. प्रार्थना, भगवान का नाम, सतत माँ का स्मरण. इफ प्रूव्ड, अगर तुमने जानने की कोशिश की कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, तो तुम ऐसा उलझोगे कि तुम्हारे अंदर झूठ और सच सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ झूठ है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. सच पाशर में चला जाता है. इफ प्रोब्ड नॉट ऑल डिसर्नमेंट कीन स्पियर पॉइंट, ही माइट स्टम्बल इन टू फॉल्सिटीज एंडलेस नेट. ओवर हिज शोल्डर ऑफन ही मस्ट लुक बैक लाइक वन हु फील्स ऑन हिज नेक एन एनिमीज ब्रेथ. बार बार जब इस भूमि पर व्यक्ति प्रवेश करता है तो पीछे देखना चाहिए, कहीं मेरा शत्रु तो पीछे डैगर लेके नहीं खड़ा है, और वो दोस्त बन के आएगा. बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है इस भूमि पर. एल्स स्टीलिंग अप बिहाइंड ए ट्रेजनस ब्लो. आपका दोस्त, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दोस्त बन के शेक हैंड करेगा लेकिन प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आपको टांग मार के नीचे गिरा दिया जाए और छुरा पीठ पर घोंप दिया जाए. ट्रेजनस ब्लो Might prostrate cast and pin to unholy soil, pierced through his back by evil's poignant stake. जैसे शिव का त्रिशूल है, वैसे ही इस अंधकार की शक्ति के पास अपना एक शूल है, और वो तुम अगर पूछने जाओगे कि अच्छा आप आपके अंदर सच क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, तो बोले कि आओ मैं बताता हूँ, अंधकार की शक्ति। तो धीरे धीरे ले जाके आपको अपने नेट में कवर करके, और जब आप पूरी तरह उसके कब्जे में हो जाओगे, तब अपना लास्ट स्ट्रोक इट पियर्सेस और आप उस भूमि पर एक अनिश्चित काल के लिए पिन हो जाते हो। सो माइट वन फॉल ऑन द इटर्नल्स रोड फॉरफिटिंग द स्पिरिट्स लोनली चांस इन टाइम। इस प्रकार जो निकला था भगवान के पास पहुंचने को, अचानक वो अंधकार के रोड पर, बाईपास रास्ते पर गिर जाता है। एंड नो न्यूज ऑफ हिम रीच द वेटिंग गॉड्स मार्क्ड मिसिंग इन द रजिस्टर ऑफ सोल्स। और अच्छे से निकला था भगवान की ओर जाने के लिए, और देवता लोग उसका नाम नोट करके रखा था रजिस्टर में, फला फला भी आ रहा है, एक लाइन क्रॉस करने के बाद अच्छा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एक लाइन है जिसको जैसे ही क्रॉस करता है व्यक्ति, देवताओं के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है। अचानक देवताओं ने देखा ये क्रॉस तो किया था वो लाइन, लेकिन कहाँ गायब हो गया। नो न्यूज रीच ऑफ हिम, क्रॉस तो उसने किया था, ठीक स्वर्ग के रास्ते पर आ रहा था, कहाँ गिर गया, कहाँ खो गया, किस अंधकार में चला गया। हिज नेम द इंडेक्स ऑफ ए फेलिंग होप, तो उसका नाम फिर किस रजिस्टर में लिख दिया जाता है, देवताओं के रजिस्टर से निकाल के दूसरे रजिस्टर में, फेलिंग होप, एनदर फेल्ड होप, द पोजिशन ऑफ ए डेड रिमेंबर्ड स्टार। फिर उससे बच के कैसे जाया जाए, ये तो बड़ा भयानक श्री अरविंद हम लोगों को दृश्य दिखा रहे हैं। कहते हैं बड़ा सिंपल रास्ता है, लेकिन उसके लिए बस या तो गिफ्ट ऑफ ग्रेस है। व्हाट इज द सिंपल वे, ओनली वेयर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। एक ही इसकी सेफ्टी है, अगेन एंड अगेन माँ को हृदय में रख के उनके नाम का स्मरण। रामायण में लाइन है कि जब हनुमान सिटी ऑफ एंशियंट इग्नोरेंस लंका में कूदने वाले हैं, देखिए बाहर से पता नहीं चलता इग्नोरेंस की, वहाँ तो बहुत वैभव है, बहुत समृद्धि है, तो उनको एक मंत्र मिलता है और उस मंत्र को फॉलो करके वो जंप करते हैं। वो देख रहे हैं, कहते हैं मुझे सीता माता को खोजना है, कहाँ इसमें वो शक्ति छिपी हुई है, इतने बड़े बड़े राक्षस भयानक, उसके जाने के पहले उनके मन में डाउट्स हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो उनको एक मैसेज मिलता है, मैसेज क्या मिलता है, प्रविशी नगर कीज सब काजा। किस नगर में जा रहे हैं, रावण के नगर में, अंधकार के नगर में। कहते हैं सब कार्य करो, लेकिन कैसे, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में किसको रखना, कौशलपुर राजा, राम को हृदय में रख के चले जाओ, अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। तो शेरविंद यहाँ पर अपने अंदाज में सुंदर ढंग से कह रहे हैं, ओनली वेयर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स, करेज देयर आर्मर। भयभीत नहीं होना है, आएगा सबके लाइफ में, ये भय नहीं लाना चाहिए, करेज साहस, फेथ देयर सोर्ड, भगवान हमको हर अवस्था से बाहर निकाल लेंगे। दे मस्ट वॉक द हैंड रेडी टू स्माइट, द आई टू स्काउट, कास्टिंग ए जेवलिन रिगार्ड इन फ्रंट। दूर तक फोर्सेस का प्ले, बहुत लोग फोर्सेस का प्ले तब जान पाते हैं जब बहुत आगे चला जाता है, एट द बिगनिंग, ये अगर हम रूट पकड़ दें तो ये वहां ले जाएगा। तो एक छोटा सा स्माइल, एक लुक, एक वाणी, इट कैन लीड यू देयर। सो इस भूमि पर इतना कॉशियस होने की जरूरत है। हीरोज एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लाइट, जो प्रकाश के सैनिक हैं, सेनापति हैं, उनको इतना सचेत होने की जरूरत है। हार्डली इवन सो द ग्रिजली डेंजर पास्ट, रिलीज्ड इनटू ए कामर प्योरर एयर। अब अश्वपति इस भूमि से बाहर निकल आते हैं। दे डेयर्ड एट लेंथ टू ब्रीद एंड स्माइल वंस मोर। अब इस भूमि से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक मुस्कान, फिर से श्वास, आह इस घोर अंधकार से निकले। लेकिन शेरविंद कहते हैं हार्डली इवन सो, वंस मोर दे मूव्ड बीनीथ ए रियल सन। जैसे वो गाड़ी होती है ना, अंधकार से निकलती है फिर बाहर आती है, ऐसे ट्यूब रेल है, लंदन में है, भारतवर्ष में भी जगह जगह है, नीचे से गुजरती है फिर ऊपर आती है, फिर नीचे से गुजरती है। दो हेल क्लेम्ड रूल द स्पिरिट स्टिल हैड पावर, दिस नो मैन्स लैंड ही पास्ड विदाउट डिबेट, हिम द हाइट्स मिशन, हिम द एबिस डिजायर्ड। स्वर्ग भी पुकार रहा था और अंधकार भी. नन स्टूड अक्रॉस हिज वे, नो वॉइस फॉर बेड, वर स्विफ्ट एंड ईजी इज द डाउनवर्ड पाथ, एंड नाउ टुवर्ड्स द नाइट वॉज टर्न्ड हिज फेस. उस भयानक अंधकार से अशुपति निकले, थोड़ी देर के लिए लगा हाँ फिर से श्वास आया, सोल के अंदर भी शक्ति है, पर अशुपति तो पूरी तरह इस अंधकार को मापने के लिए निकले हैं. तो उस भूमि पर खड़े होकर किस ओर मुड़ते हैं? प्रकाश की ओर, एस्केप करने के लिए, और गहरे अंधकार की ओर, कि यह जो कुछ मैंने देखा इसका रूट कहाँ है. टुवर्ड्स द नाइट वॉज टर्न्ड हिज फेस. नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे.